शांति। आज के प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी। हम एक हाथ हिलाकर दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ब्रह्मा बाबा 1969 में अव्यक्त हुए और उसी वर्ष आप इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर आए, और उसके बाद 1972 में जब आपने अपनी मैट्रिक बोर्ड की एग्जाम पास की तो जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। चूंकि आप गुजरात की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं, आरंभ में आपने सूरत, भरूच, बड़ौदा, अहमदाबाद आदि आदि स्थानों पर अपनी अमूल्य सेवाएं दी, और उसके बाद लगातार 14 वर्षों तक भावनगर सब जोन इंचार्ज के रूप में अपनी अमूल्य सेवाएं की। और उसके बाद 1993 में जब ज्ञान सरोवर अकेडमी का निर्माण कार्य आरंभ हुआ, बाबा ने आपको वहां निमित्त बनाया। लगातार 18 वर्षों तक आपने वहां रहकर खूब सेवाएं की, और फिर 2010-11 में शांतिवन में जब सेवाओं का विस्तार बढ़ता गया तो बाबा ने आपको शांतिवन के लिए निमित्त बनाया। तो शांतिवन में रहकर आप हेडक्वार्टर के सभी कैंपस में अपनी सेवाएं देते हैं, देश विदेश में सेवाएं देते हैं। आप मुख्य रूप से राजयोग शिविर की, भर्तियों की, एसएमएल की प्रशिक्षिका हैं, और हमारा जो बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग है उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। और इसलिए पूरे भारत भर में समय समय पर कहीं शिविर तो कहीं भर्तियां तो कहीं एसएमएल तो कहीं बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग के प्रोग्राम कराने के लिए भ्रमण करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त हेडक्वार्टर में दादी रतन मणि जी के ऑफिस का भी कार्यभार आपके कंधों पर है, और ज्ञान की गहराई तो बहुत है। तो आज हमारे बीच में अपने अनुभवों से हमें मार्गदर्शन देंगे कर्म योगी स्थिति क्या होती है। सुनते हैं दीदी से, आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। सबको तपस्या करना अच्छा लग रहा है? बरसात के मौसम में प्रकृति चारों ओर खिल उठती है, तो बाबा की भी बहुत याद आती है ना? मन भी प्यार से भीगा भीगा रहता है। योग लगने का आधार क्या है? प्यार, भगवान से प्यार करना, बात करना, उनसे मिलते रहना हरदम। उस वातावरण में तपस्या करने का मौका आप सबको मिला है। ड्रामा देखो कितना कल्याणकारी है। पांडव भवन में भारतवासी भाई बहनों को कभी रहने का मौका ही नहीं मिलता था। ज्ञान सरोवर में भी नंबर नहीं लगता था। कोरोना ने ऐसा सीन बदल दिया कि लगातार 2 साल से भट्टियां चल रही, हर बात में बाबा कहते हैं ना कल्याण है, बस हमें अपनी स्थिति में स्थिर रहना है। परिस्थिति को देखकर ऊपर नीचे नहीं होना है, हमें पता है कि हमें कौन मिला है, कौन मिला है, स्वयं भगवान मिले हैं, सत्य ज्ञान मिला है, पवित्र परिवार मिला है, इतना महान बाबा का घर मिला है, यज्ञ कितना सौभाग्य है। हमें तो इन सब का लाभ लेते हुए अपनी स्थिति बनाते जाना है, और स्थिति हमारी स्थिर रहती है तो परिस्थिति घूम घाम के अपने आप सीधी हो जाती है, वो भी ठीक हो जाती है। हमें अच्छा लड़ोल रहना है तो कौन सा तप किया, कल ही शुरू हुई ना पट्टी, अभी 3 दिन आज से, क्या तप हमें करना है। वैसे तो हम रोज बाबा को याद करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कर्म योगी तो है ही, पर जब हम लक्ष्य पूर्वक दृढ़ता से योग करते हैं तो उसे तपस्या कही जाती है। हमारी तपस्या कौन सी है, देह में रहते हुए देहभान से न्यारा रहना, ये सबसे बड़ी तपस्या है। द्वापर युग से फिर भी भगवान को याद करने का अभ्यास है भक्ति में, सही ज्ञान नहीं था पर भगवान को याद करने का अभ्यास तो था, पर कौन सा अभ्यास नहीं था, अपने को आत्मा समझने का अभ्यास नहीं। इसलिए वो प्रैक्टिस हमें ज्यादा करनी पड़े, क्योंकि देह भान से सारी भौतिकता शुरू होती है। हम योगी से भोगी क्यों बने, देहभान के कारण ही बने। अपने आप को भूले, क्योंकि देह द्वारा कर्म करते करते खुद को भूल गए और खुद को देह समझने लगे, और देहभान में आने से दुनिया से भी अटैच हो गए, क्योंकि 5 तत्व का शरीर है और ये संसार भी 5 तत्व का ही बना हुआ है। तो देहभान में आते ही दुनिया से हम आकर्षित हो गए, और फिर तो रिजल्ट जानते हैं, कलयुग के अंत तक हम क्या हो गए। बाबा ने आकर हमें जगाया, भल हर क्षण शरीर द्वारा हम कर्म करते हैं पर हम शरीर नहीं हैं, ये अवेयरनेस, ये डिटैचमेंट हमें घड़ी घड़ी रखना है कि जो देखने में आ रहा है वो मैं नहीं हूं, मैं तो निराकार ज्योति बिंदु। ये बार बार रिवाइज भी करना है, रियलाइज भी करना है, यही तपस्या। और मैं आत्मा, कौन सी आत्मा? शुद्ध आत्मा, शांत आत्मा हूं, जो हमारी ओरिजिनल क्वालिटीज है उसको महसूस करें, तो आत्मा में आता है कि मैं तो ओरिजिनली शुद्ध आत्मा हूं, मेरे में विकार थे ही नहीं, इसलिए वो मेरे है ही नहीं। ये तो द्वापर से आए, मेरी ओरिजिनालिटी पवित्रता है, तो अब मेरे में विकार का कोई अंश नहीं रहना चाहिए। फिर ये हमारा लक्ष्य बन जाता है, कि जब कर्म से हम पवित्र हैं तो मन में विकार क्यों रहे? खुद को ही लक्ष्य बनेगा कि मुझे मन वचन कर्म से शुद्ध बनना है। दादियां बताती रही कि हम शुरू में घंटों एक ही संकल्प में बैठे रहते थे, मैं शुद्ध आत्मा। बड़ा हमको वंडर लगता था, घंटों एक ही विचार में कैसे बैठे रहना है। पर अब अनुभव करते हैं कि जैसे जैसे हम शुद्ध बनते जाते हैं, हमें अपनी ही स्थिति में आनंद आने लगता है। हमें अपनी ही स्थिति में आनंद आता है। और पता है, बीज तो बाबा है जिसने हमें ये ज्ञान दिया है, तो मन बाबा से जुड़ा रहेगा। हमारी दूसरी तपस्या है एक बाबा दूसरा न कोई। तो पूछो अपने आप से, भट्टी में बैठे हो ना, अभी भी मन और बातों में क्यों जाता है? मुझे औरों से क्या चाहिए? आत्माओं से लेन देन आत्मा को बांधने वाली है। इस संसार में कुछ भी मुफ्त थोड़ी मिलता है। उन्होंने दिया इसलिए मैंने लिया, नहीं, वो हिसाब बनता है। जितना लेते जाएंगे आत्मा दबती जाएगी, ऋण चढ़ेगा। इसलिए ये समय तो मुक्त होने का है, ये तो एंड है ना साइकिल का। अब तो पूरा क्लियरेंस करना है, पूरे चक्र में तो हिसाब माइनस प्लस होते होते लिंगर ऑन होता रहा ना, पर ये तो रहा एकदम वर्ष पूरा होता है तो क्लोजिंग होता है ना, ये फाइनल है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाकी रहेगा तो फिर बीच में रुकना पड़ेगा, दंड खाना पड़ेगा। क्यों नहीं अभी ही तपस्या के द्वारा क्लियर कर दें। ये समय है नए हिसाब बनाने नहीं, ये मुझे अटेंशन रखना है, क्योंकि बनाए हुए आधा कल्प के जन्म जन्मांतर के मुझे योग बल से चुकाने हैं। बाबा कहते हैं कितना बोझ सिर पर चढ़ा हुआ है, हिसाब हमने बनाए हैं, हमें चुकाने हैं, योग बल से चुकाने। नए बनाने नहीं हैं, क्योंकि नए का हिसाब तो क्या है, संगम युग में नया पाप किया तो उसका हिसाब तो क्या है, एक का 100 गुना, ये तो बहुत भारी हिसाब है। इसलिए मुझे अपने आप को हर घड़ी याद दिलाना है कि मैं योगी आत्मा हूं। ब्राह्मण जन्म हुआ, ब्रह्मा कुमार कुमारी तो कब से बन गए, अब क्या बनने का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। बाबा कहते तपस्वी कुमार तपस्वी कुमारियां, योगी बनने का, बल्कि योगी जीवन हम जी रहे। पर ये अवेयरनेस कि मैं योगी आत्मा, योगी जन उसको कहे, शीतल जिनके अंग, जिनके हर कर्मेंद्रियां शीतल है, विकार की कोई अग्नि नहीं, ज्ञान नहीं था, हर कर्मेंद्रिय से पाप किए, किए कि नहीं किए, किए ना अज्ञान काल में, बोल भी ऐसे बोले, कर्म भी ऐसे किए, मन में सोचा तो पता नहीं क्या क्या, आंखें भी दिखाई दूसरे को, नाक भी चढ़ाया, मुंह भी बिगाड़ा, तो देख हर कर्मेंद्रिय से कुछ ना कुछ हिसाब बने, गलत हुआ। अब मुझे हर कर्मेंद्रिय से पुण्यात्मा बनना है। बाबा कहते हैं मुरली में, पर मुझे लक्ष्य बनाना है, सिर्फ सुनना नहीं है, व्यक्तिगत ये ठानना होगा कि मुझे हर कर्मेंद्रिय से पुण्यात्मा बनना, सत्कर्म करना है। ये खुद पर अटेंशन, ये तप है, ये तप है। भई आज ये तपस्या के दिन चल रहे हैं, उपवास के दिन है, ये नहीं खाना नहीं खाना, अटेंशन रहता है ना। हमारा तो जीवन भर की तपस्या है, इसलिए बाबा कहते हैं ना, योगी जीवन, दो घंटे के योगी नहीं, चार घंटे के योगी नहीं, योगी जीवन, और जीवन निरंतर होती है। तो हम सबके जीवन में विशेष तपस्या तो सुबह और शाम होती है, अमृत वेला हम विशेष बैठकर योग करते हैं। इसलिए अमृत वेले के तपस्या को बहुत क्वालिटी बनाना है। आज बरसों बीत गए ब्राह्मण बने, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 60 साल, कितने साल हो गए और हमारे योग का ठिकाना ही नहीं है। कभी उठते हैं हम, कभी नहीं उठते, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। रोज उठते, रोज नींद करते योग में, तो मेहनत करनी है खुद के पीछे। मुझे नींद क्यों आती है चेक करो। आप मेरे साथ बात करो और मैं नींद करूं तो आपको अच्छा लगेगा? बाबा बात करे, बाबा मिलन के लिए हैं ये टाइम। बाबा कहते 3 बजे से 5 बजे का समय बाबा से मिलन का समय है, बाप और बच्चों के मिलन का समय। 5 बजे से तो भक्तों की लाइन लग जाती है और वो लाइन तो बहुत लंबी है, हमारा नंबर ही नहीं लगेगा। हमें बाबा से कुछ पूछना है, हमें बाबा से कुछ बताना है, हमें बाबा से कुछ पाना है, तो वो टाइम तो 2 से 5 का है। तो कुछ भी करें हमें उसी समय के अंदर मिल लेना है। चलो और ज्यादा नहीं तो बाबा कहते हैं 4 से 5 मिल लो। फिर बच्चों की भी भीड़ लगती है 5 बजे में, तो 4 से 5 में तो पर वो समय है दिनचर्या का फाउंडेशन। फाउंडेशन की तपस्या होगी तो सारा दिन कर्म पर उसका प्रभाव रहे। बाबा ने कहा है अमृत वेले जो दिल से बाबा को याद करेगा उसको सारा दिन ऑटोमेटिक बार बार बाबा याद आता रहेगा। फिर हर कर्म में स्वतः याद रहे, क्योंकि अमृत वेले उठने से मन अंतर्मुखी बनता है। दिनचर्या फिर आपकी अंतर्मुखी और सात्विक हो जाएगी। आपने अमृत वेले ही मन और बुद्धि को योग का कवच पहना दिया, फिर आपको दुनिया, बातें, दिन भर की परिस्थितियां कोई खींचेगी नहीं, सहज हो जाएगा। तो वो फाउंडेशन जरूर डालना है। आपको दिन में आराम नहीं मिलता है, नौकरी है, धंधा है, आप रात को जल्दी सो जाओ, पर अमृत वेले योगी स्थिति का एहसास होता है। बाकी तो सुबह उठकर तो भगत भी भगवान को याद करते, पर हम योगी हैं, तपस्वी हैं, ये एहसास आपको तब होगा जब अमृत वेले बाबा की याद करेंगे। अमृत वेले योग को सफल करना है तो पहली बात निंद्रा जीत बनना है। इसका मतलब उठना ही है, कितनी भी निंदा आवे पर अमृत वेले उठना है। चलते फिरते योग करो, कुछ भी करो, मुरली पढ़ो, लिखो, पर उठते रहो, अपने आप धीरे धीरे निंद्रा जीत बन जाएंगे, फिर आपको योग में डिस्टर्बेंस नहीं रहे। और अमृत वेला फाउंडेशन में ही, जैसे वे जड़ों में ही पानी देते हैं, तो वो पानी सारे वृक्ष को पहुंच जाता है, अपने आप पहुंच जाता है। हमें एक एक पत्ते को पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। ऐसी दिनचर्या के फाउंडेशन में तपस्या है तो वो अनुभूति सारे दिन के हर कर्म में सहज आ जाएगी। और आप देखिए, संगम युग तो सारे सृष्टि चक्र का अमृत वेला है, संगम युग पूरा ही अमृत वेला। सतयुग सवेरा है, त्रेता युग दोपहर है, द्वापर युग शाम है और कलयुग रात है। तो संगम युग क्या हुआ? पूरा संगम युग अमृत वेला। और उस अमृत वेले के युग में अमृत वेला तो कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर दिन भर कर्म योगी बनना चाहते हैं, नेचुरल योगी बनना चाहते हैं, जैसे मधुबन की भूमि में नेचुरल बाबा याद रहता है, क्योंकि इस भूमि के कण कण में बाबा का तप है। मधुबन में नेचुरल योगी हम बन सकते हैं। इस प्रकार हम जहां भी हैं, निरंतर योगी, नेचुरल योगी, कर्म योगी बनना चाहते हैं तो फाउंडेशन मजबूत करना है, अमृत वेला मजबूत। इतना हमारे जीवन में ये पक्का हो, हम कह सकें कि ब्रह्मा कुमार कुमारी अमृत वेले, ब्रह्मा कुमार कुमारी अमृत वेले जिंदा या मुर्दा बाबा के कमरे में ही मिलेंगे। क्योंकि अमृत वेले हम कहां होने चाहिए? बाबा के कमरे में। और रात को सोने की विधि को ठीक करना है तो अमृत वेला ठीक होगा। जिन विचारों को लेकर रात को सोएंगे, उन्हीं विचारों के साथ अमृत वेले उठेंगे। टीवी देखते देखते सो गए तो उठते ही वो लिंक जुड़ जाएगी टीवी से, फिर तेरी मेरी करते करते सो गए तो वो बातें याद रहेगी। ऐसे ही घर के काम याद करते करते सो गए तो उसी में बुद्धि रही। इसलिए बाबा ने संडे की मुरली भी तो वही थी ना, चार्ट। हा? बाबा के थे ना, रात को बाबा को अपना पूरी दिन का चार्ट देकर सो जाओ, मीन्स बताओ मन ही मन कि बाबा आज सुबह से लेकर देखो आज क्या क्या किया, कहाँ अच्छा हुआ, क्या विशेष किया, क्या गलत हुआ। रियलाइज करें, बाबा को सच्चाई से बताएं और दृढ़ता करें कि बाबा दोबारा मैं ऐसे नहीं करूंगा, अब दोबारा ये भूल मेरे से नहीं। मन साफ करके बाबा की याद और प्यार में सो जाना, वही बाबा की गोदी में सोना। हाथ पांव धोकर, मुंह धोकर, साफ होके, बिस्तर साफ करके सोते हैं ना, ऐसे मन को भी साफ करके सो। हम क्या करते हैं, बाबा को बताते भी हैं, फिर लेते लेते और सोचते रहते, नहीं फिर और नहीं सोचना है। फिर बाबा की याद में सो जाना है तो सात्विक निंद्रा आएगी, कोई गंदे डरावने सपने नहीं आएंगे, और उठते ही बाबा याद आएगा। हम उठते हैं पर कोई को उठते ही घड़ी याद आती है, देरी तो नहीं होगी, माना टाइम कॉन्शियस होकर हम सोए, ये होता है शुरू शुरू, धीरे धीरे लगन लगी रहेगी, हम पुरुषार्थ करते रहेंगे फिर चेंज होगा, फिर टाइम कॉन्शियस नहीं रहेंगे। कईयों को उठते ही कामकाज याद आते हैं, वो कर्म कॉन्शियस, कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। मैं खुद बहुत कर्म कॉन्शियस, ये सेवा वो सेवा, कल उसको मिलना, ये कहना वो कहना, ऐसा और कोई बातें नहीं पर यही बातें। फिर मैंने आखिर सोचा कि ये दादियां इतना कारोबार संभालती है, ये तो कर्म कॉन्शियस नहीं है, हम तो कोई छोटे मोटे डिपार्टमेंट संभालते हैं। तो मैंने ये दो चीज दादियों में देखी कि एक तो इनकी आत्मभिमानिता की साधना बहुत पक्की है, इसी का रिजल्ट है कि जीवन भर उनकी बुद्धि में कोई देहधारी आ नहीं सका। जीवन भर इंसान कितने ना आत्माओं के साथ काम करते, और दादियां तो हजारों को मिलती है, पर उनके मन के अंदर कोई नहीं आ सकता है। एक बाबा, एक यज्ञ, बस और कोई बातें नहीं। ये उनका बहुत पक्का फाउंडेशन था। हमने भी उनसे सीखा ये बात कि नहीं, मैंने बाबा से बात की कि बाबा पहले मैं ये सोचती थी कि बाबा का कार्य हमारा कार्य है, हम जवाबदार है, हम बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमें ही करना है, तो मैं कर्म कॉन्शियस हो गई। फिर मैंने चेंज किया कि बाबा जवाबदार आप है, बाकी मैं करने वाली हूँ, हम करनहार है, बाकी जिम्मेवार आप है। तो हम रिलैक्स रहते हैं और करते भी। करना तो हमें ही है, हम इतने हैंड्स बाबा के बने हैं, वो किस लिए बने? हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, हमें ही करना है। पर अल्टीमेट बाबा जवाबदार है। तो अंदर से रिलैक्स हो गए, फिर कितनी भी जवाबदारी उठा के काम करो, पर बाबा कहते हैं ना, तुम निमित्त हो, जिम्मेवार मैं हूं। तुम करनहार हो, पर करावनहार मैं हूं। ये क्यों बाबा पक्का कराते हैं? ताकि कर्म कॉन्शियस न बने। हमें तो बाबा कॉन्शियस बनना है, सोल कॉन्शियस बनना है। जितना ये पाठ पक्का होगा, दिन भर आप कितने भी कामकाज करेंगे, आप कर्म में खो नहीं जाएंगे। ऐसा ना लगे कि मेरे कर्म मुझे ही बाबा से अलग कर रहे, तो ऐसे तो नहीं होने चाहिए। मुझे हर कर्म करते हुए बाबा की याद में रहना है, साथ का अनुभव करना है, और जितना हम उनकी डिसिप्लिन अनुसार कर्म करेंगे, श्रीमत अनुसार कर्म करेंगे, नियम मर्यादा अनुसार कर्म करेंगे, तो हमें ऑटोमेटिक बाबा याद रहेगा। और जब आप फिर संध्या के समय विशेष योग करेंगे, देखो संध्या का समय भी योग के लिए उत्तम समय है, क्योंकि उस समय सब कोई समेटने लगते है कि ना, दिन भर का किया हुआ फैलावा शाम होते ही समेटने लगते हैं। गाय भैंस दुनिया भर में घूम के शाम होते ही मालिक के पास जाने लगती है, पंछी भी घोंसले की ओर वापस जाते हैं। ये समेटने का समय है, संध्या का समय। चारों ओर लोग भक्ति करते हैं तो एक सात्विक वातावरण बनता है बाबा की याद का, है ना? चारों ओर मंदिरों में, घरों में, दुकानों में भी लोग अपना दीवा आरती करते हैं ना, समय भी बाबा की याद में बहुत अच्छी रीति आप अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं। तो अमृत वेला और संध्या, ये दो ही समय हैं जब हम ज्यादा योग करते हैं, एक घंटा बाबा की याद में बैठते हैं। पर दिनचर्या जितनी हमारी सात्विक होगी, अंतर्मुखी होगी, कर्म योगी की होगी, तो संध्या के समय मन को समेटना सहज हो जाए, फिर मेहनत नहीं लगेगी, बस बैठे और कनेक्ट हो गए। हमें अपने आप को, मन बुद्धि को तैयार करने में, सबसे निकालने में मेहनत नहीं लगेगी। पर आपका लक्ष्य हो जीवन का कि मुझे इस दुनियादारी में भटकना नहीं है, उसमें मुझे फंसे नहीं रहे। वल ठीक है, बाबा ने कहा निमित्त घर में ही रहना है, संभालना है, पर मुझे उसमें उलझ नहीं जाना है, फंस नहीं जाना है। अब ये सब कुछ निमित्त मात्र है, बाबा ही सर्वस्व है। हम क्या करते हैं, निमित्त मात्र ज्ञान योग बाबा, बाकी सब कुछ उल्टा सीधा सारा दिन करते रहना है। नहीं, अब हमारा है सर्वस्व बाबा, बाकी जो है उसको निभाना है। हाँ, ज्ञानी योगी बनकर प्यार से निभाना। अब तो कला आ गई ना, फंसेंगे नहीं, रिएक्ट नहीं करना है, दुख नहीं देना है। ये मुझे मेरे जीवन के प्रिंसिपल्स बनाने हैं, क्योंकि बाबा ने कहा है। डिटैचमेंट चाहिए, क्यों साक्षी बनना है। अटैच हो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे तो योग करते समय निकलने में टाइम लगेगा। देखो, सबको सेवा क्यों सहज लगती, सभी सेवा में जल्दी इन्वॉल्व हो जाते, क्योंकि उसमें इन्वॉल्व होना है, सबसे मिलना है, कामकाज करना है। और योग में निकलना है, डिटैच होना है। तो अभी भी कईयों को डिटैच होना पसंद नहीं है, टाइम है तो सेवा करने लग जाएंगे पर योग नहीं करेंगे। टाइम है, फ्री बैठे हैं तो राह देखेंगे, कोई आवे तो बात करे। वही टाइम है तो बाबा को याद करें, क्योंकि योग में सबसे अलग होना है। और ये हमें अभ्यास करना ही है, क्योंकि अब तो वापस घर जाना है, निकलना है ना खेल से, घर में जाना है, निराकार स्थिति में बैठना है। तो प्रैक्टिकल इसकी अभ्यास चाहिए। दूसरा, मुझे सार में जीना है, विस्तार में भटकना नहीं। बहुत विस्तार में गए है ना, बोलो, पूरी जिंदगी गृहस्थी भाई बहनों की तो परिवार के पीछे, खुद ने ही विस्तार किया और खुद ही उसमें टाइम योग लगाते रहते हैं। हाँ, और उसमें देह माना विस्तार, आत्मा माना बीज सार। तो मुझे सार में स्थित होना है तो प्रैक्टिकली भी मुझे अपने आप को समेटना है। अगर मुझे सच में योगी की स्थिति बनानी है, मुझे भौतिक सांसारिक दैहिक इच्छाओं को सीमित करना है। दोनों लड्डू नहीं ले सकते, वो भी मजा लेते रहे, ये भी मजा लेते रहे, नहीं तो योग नहीं लगे। मुझे समेटना है। क्यों योगी के लिए गाया है, सादा सात्विक सरल जीवन इसलिए जरूरी है। थोड़ी भी फैशन करते हैं तो चार बार आईने में देखते हैं, बहिर्मुख हो गए। नए कपड़े पहनते हैं उस दिन मैं चार बार देखूंगी और जहां बैठूंगी कॉन्शियस रहूंगी मेरी साड़ी ठीक नहीं है। तो ये चीजें बॉडी कॉन्शियस बनाने वाली है, पर हमें पहननी तो है। तो बाबा ने इसलिए हमें कहा सादा सात्विक जीवन। हाँ, बाबा ये नहीं कहते हैं कि ऐसे मैले गेले अस्वच्छ अव्यवस्थित रहो, नहीं। पर मेरा अटेंशन हो हर बात में कि मैं योगी हूं, मुझे विस्तार में नहीं जाना है, जो जरूरी है वो करना है। तो प्रैक्टिकली जीवन आप ऐसा जिएंगे तो मन सहज समेटेगा, नहीं तो मन को समेटना मुश्किल लगेगा, मेहनत लगेगी। मैंने देखा मॉर्निंग स्कूल में बच्चे उठ के जाते हैं और घर में दूसरे सोए रहते हैं, उस समय बच्चे को उठना कितना मुश्किल लगता है, क्योंकि बाकी सब बड़े सोए हुए हैं और वो बच्चा बेचारा सुबह उठ के उनकी माँ तैयार करके भेजती है। अगर उस समय घर में सब उठे तो उस बच्चे को मेहनत ही नहीं लगेगी। बच्चे को हम कहेंगे पढ़ और हम टीवी देखें बातें करें तो फिर वो कैसे पढ़ेगा। माहौल चाहिए। तो मुझे भी योगी बनना है तो ना ज्यादा बातों के वर्णन में जाना है ना विस्तार में जाना है। उसके लिए हमारे में अभ्यास चाहिए, हर बात को पहाड़ नहीं बनाना है, राय बनाना है। फुल स्टॉप लगाओ। अगर आदत है इतनी बात जानने को मिली और बात का बतंगड़ कर देते हैं, अगर ये आदत है तो आप योगी नहीं बन सकते, क्योंकि आपकी नेचर तो व्यर्थ के विस्तार में जाने की। तेरी मेरी यहां की बातें सुनते हैं तो आंखें भी खुली और कान भी खड़े हैं, कौन सी बातें बताओ बताओ, मैंने थोड़ी सुनी, इतना इंटरेस्ट हम लेते, जैसे कि इस बात सुने बिगर हम देवता बन नहीं सकेंगे। क्योंकि अब तो अलौकिक परिवार में ही तेरी मेरी करते हैं ना, अब थोड़ी लौकिक के साथ आप करने जाते, वहां से तो आप निकल चुके हैं। अब पता है तुमको करके कितना इंटरेस्ट लेते हैं, बताओ। फिर वो बात जो आपका खास होगा उसको सुनाएंगे, फिर वातावरण बनता है। कौन हमें योगी कहेगा? हमें इन बातों से निकलना है, ये मेरा काम नहीं है, मैं योगी हूं। इसलिए चलो मैं 5 संकल्प पक्के कराती हूं, टाइम हो गया, सभी खड़े हो जाओ। रोज खुद खुद को रिवाइज करा। लाल लाइट करें। ब्रुकुटी में समेत के स्मृति स्वरूप बन जाओ। मैं आत्मा अनादि स्वरूप से
पूर्ण शुद्ध आत्मा हूं। मैं सत्य हूं, शुद्ध हूं, पवित्र हूं। राइट साइड घूम जाइए, राइट साइड, मेरा वर्तमान जीवन भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। मेरा नया जन्म हो चुका है, इस नए अलौकिक मर्जी वे जन्म में मैं पवित्र योगी आत्मा हूं। मैंने आत्मस्मृति का तिलक लगाया हुआ है। मन वचन कर्म की पवित्रता की जनेव मैंने धारण की है। राइट साइड घूम जाइए, इस अंतिम जन्म में जो लौकिक अलौकिक रोल मुझे मिला है, मुझे बाबा की श्रीमत अनुसार प्ले करना है। बाबा मालिक है, मैं ट्रस्टी हूं। मालिक के इशारे पर सच्चाई सफाई से मुझे कार्य करना है। राइट साइड घूम जाए, संगम युग के अंतिम चरण में अब मैं तपस्वी आत्मा मुझे हर कर्मेंद्रिय से देहभिमान का त्याग करना है। मुझे हर कर्मेंद्रिय में आत्म अभिमानिता का तेज धारण करना है। राइट साइड घूम जाए। मुझे बाप समान संपन्न संपूर्ण कर्मातीत अव्यक्त फरिश्ता बनना है। व्यक्तिगत मुझे लक्ष्य बनाकर दृढ़ता से तपस्या करनी है।